ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ग्रंथराश्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 18। तो आप सब परिचित हैं, आज महान उत्सव है। गिरिराज को भगवान ने धारण किया था गोवर्धन पूजा, तो उसके उपलक्ष में हम श्रीमद् भागवतम का एक विशेष श्लोक का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे, जो साक्षात गोपिकाओं ने कृष्ण के सराहना में या गोवर्धन की महानता को स्थापित करने के लिए उच्चारित किया था ब्रजभूमि में। हंताय मंत्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह भोगनयोस्तयोर्या पानीय सूवय पानीय सूयवस कन्दर कंद मूले हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह भोगनयोस्तयोर्या पानीय सूयवस कंदर कंद मूले। अनुवाद तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ये गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, ये पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह ये पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा है। उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद के चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 18 अध्याय 34 से लिया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के चरणों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस, पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवस दुर्वा अर्थात दो घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होता है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि और उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहाँ कृष्ण तथा बलराम उनके संगी खेलते हैं, बैठते और लेटते हैं। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंदर, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। ज्ञानतिमिरान्धर्षज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितम् येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोवर्धन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है ये गोपियों ने उच्चारित किया था और जिसमें उन्होंने स्थापित किया है कि जो गिरिराज हैं वो कितना महत्वपूर्ण भगवत सेवक है। तो शास्त्र में गोवर्धन के प्रणाम के बारे में वर्णन आता है। तो आचार्यगण कहते हैं, आज हम कुछ चीजें समझने का प्रयास करेंगे कि गोवर्धन वास्तव में कौन है, वो किस प्रकार से कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण के भक्त है। गोवर्धन ये दोनों चीजों को प्रकट करता है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्त के रूप में अवतरित होते हैं और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहीं है, वो भगवान भी है और भगवान के सर्वोत्कृष्ट भक्त है। और किस प्रकार से गोवर्धन का अपीयरेंस प्राकट्य हुआ और गोवर्धन हमें क्या दे सकते हैं, किस प्रकार से उनको अप्रोच करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं, नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने। मैं गिरिराज को प्रणाम करता हूं। नमस्ते गिरिराजाय, गिरि का मतलब है पर्वत, राजाय मतलब जो किंग है, सारे पर्वतों का जो राजा है। सनातन गोस्वामी ने श्री बृहद भागवतामृत में जब गोवर्धन का गुणगान करते हैं तो वो लिखते हैं, गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराजो ये गोपिकाभिरवदितो हरिदास वरिया। उन्होंने कहा गोवर्धन जयति, मैं गोवर्धन की जयकार करता हूं, शैल कुलाधिराजो, हाँ वो सारे जो शैल मीन्स जो पहाड़ हैं, पर्वत आदि हैं, उनके राजा है ये गोपिका भीरवदितो हरिदास वरिया। और ऐसे गिरिराज का गुणगान गोपिकाओं के मुख से सुनने को मिलता है। गोपिकाएं भी उनका वर्णन करते हुए कहती है कि वो हरिदास वरिया है, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। वरे का मतलब है सर्वोत्कृष्ट। कृष्णेन शक्रमक भंग कृतार्चितो यम सप्ता हमाशकर पद्मतले पिवस्ते। और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सप्ता हमाशक, एक सप्ताह के लिए कृष्ण ने अपने कर पद्मतले पिवस्ते, अपना जो हाथ है उस पर उन्होंने उनको धारण किया था। तो सनातन गोस्वामी ने भी कहा कुलाधि राजो, शैल कुलाधि राजो, वो राजा है, किंग है। तो ऐसे गिरिराज को प्रणाम करते हुए आचार्यगण कहते हैं, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने। मैं गोवर्धन को नमस्कार करता हूं। हाँ, जो गोवों का वर्धन करने वाले हैं, अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। अशेष क्योंकि हमारे जीवन में क्लेशों का कोई कमी नहीं है, शेष नहीं होते। हाँ, हमारे जीवन में क्लेश कितने हैं, अशेष, जिनकी गणना नहीं है, जिसका कोई खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। परमानंद दायिने, तो जिनकी शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन के सारे जो क्लेश हैं वो खत्म हो जाते हैं, या जो परम आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे गोवर्धन को मैं नमस्कार करता हूं। तो ऐसे गिरिराज का चरणों का आश्रय क्यों एक साधक या भक्त को लेना चाहिए? क्योंकि यदि हमारी आकांक्षा है, गिरिधारी को प्राप्त करने की आकांक्षा है, तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? गिरिराज का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि हम गिरिधारी को चाहते हैं। इसी कारण से शास्त्र कहते कि गिरिराज गोवर्धन एक साधक या भक्त के और कृष्ण के बीच में एक ब्रिज है, पुल है। यदि व्यक्ति गिरिराज का आश्रय ग्रहण करता है तो वह सरलता से जो गिरिवरधारी है, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण है, हाँ, उनको प्राप्त कर सकता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने प्रार्थना में कहते हैं, गोवर्धन दश संप्रार्थनाकम, उसमें कहते हैं निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। वो कहते हैं कि हे गिरिराज, आप मुझे क्या करो, मुझे किसी और स्थान में रहने की अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है, मैं तो आपके निकटतम ही निवास करना चाहता हूं। इस प्रकार से गिरिराज हमें भगवत भक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं, हाँ, क्योंकि वो हरे के जो दास हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए रोज हम गिरिराज का स्मरण करते हैं, हम प्रणाम जय ध्वनि में भी गिरिराज का स्मरण करते हैं, गिरि गोवर्धन की जय, और प्रभुपाद ने हर भागवतम क्लास के पहले हम गिरिराज का स्मरण करते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी गिरिवरधारी, गिरि गोवर्धन को धारण करने वाले कृष्ण। तो इस प्रकार से ये जो गोवर्धन है, ये भगवान के धाम में नित्य नियमा नित्य रूप से निवास करता है। जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतो, भगवान आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं और इस जगत में भी आते हैं तो अपने धाम को लेके आते हैं। तो धाम को लेके आते हैं, इसका मतलब है कि उनके जो नित्य संगी है, पार्षद है, धाम की वस्तुएं आदि है, उनको लेकर भगवान ये जगत में आते हैं। और जिस प्रकार से इस द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होने से पहले भगवान ने श्रीमती राधिका को कहा कि मैं अपनी जो लीलाएं हैं वो पृथ्वी में करने जा रहा हूं, आपको भी मेरे संग में आना होगा। तो श्रीमती राधिका कहती हैं कि मैं तभी आ सकती हूं जब वहां क्या होने चाहिए, ये दो चीजें हो, तो एक है गिरि गोवर्धन और दूसरी यमुना जी हो, तो मैं वहां आ सकती हूँ। तो इस प्रकार से गोवर्धन नित्य भगवान के धाम में है और भगवान की सदैव सेवा में लगा हुआ है। उनकी रहस्यमयी लीला स्थली का स्थान है गोवर्धन। इसलिए निट्रोप इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ जनितोपुरा, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी है मथुरा है, मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ क्या है, गोवर्धन है। तो ये जो गोवर्धन है ये वृंदावन का ही एक भाग है। वृंदावन में 12 प्रमुख वन है, और लेकिन टोटल नारायण भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि ये वृंदावन 48 वनों से बना हुआ है। उसमें वन है, उपवन है, प्रतिवन है, अधिवन है। तो ये जो गोवर्धन वृंदावन के अंदर ये जो अधिवन आता है, ये गोवर्धन अधिवन के रूप में ब्रज में एक प्रकार से निवास करता है। तो ऐसा गोवर्धन एक साधक के जीवन में बहुत महत्व रखता है। जैसे श्रील प्रभुपाद का भी नाम गोवर्धन रखा था, प्रभुपाद हरिशौरी प्रभु जो उनके सेवक थे, तो एक दिन ऐसे बात कर रहे थे श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने कहा मेरे कई सारे नाम थे। हरिशौरी प्रभु ने कहा कौन कौन से नाम थे प्रभुपाद? उन्होंने कहा मोती था, नंदू था, कचोरी मुखी था, क्योंकि कचोरी बहुत खाता था, तो मेरी दादी ने या नानी उन्होंने कचोरी मुखी नाम दिया था, और दूसरा नाम मेरा गोवर्धन था, मेरे रिलेटिव्स ने रखा था। तो लेकिन ये पूरा गोवर्धन नाम इतना बड़ा था तो शॉर्टकट हो गया, मुझे सब लोग गोवर गोवर कहते थे। तो ये हरिशौरी प्रभु कहते प्रभुपाद गोवर का मतलब क्या है? प्रभुपाद कहते काऊ डंकर। तो इस प्रकार से गोवर्धन वो सर्वोत्कृष्ट भगवत सेवक है। तो हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से इवन श्रीमती राधा रानी और जो सखियां आदि हैं वो गोवर्धन की महिमा को सुनने के लिए लालायित रहती हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि श्रीमती राधिका जब बरसाना में थी अपने वृषभानु के महल में, तो उस समय उनको बहुत अधिक भगवत विरह अनुभव कर रही थी, भगवान कृष्ण से मिलना चाह रहे थे और सारी गोपियां उनके पास से निकट ही थी। तो श्रीमती राधिका सो रही थी तो वो उठी और जैसे उठी तो तुरंत कृष्ण का जो स्मरण है वो बहुत अधिक उनको होने लगा, भगवत स्मरण से वो विवल हो उठी और रोने लगी और रोते हुए वो कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगी। और उन्होंने देखा कि कृष्ण कहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने विंडो खोली, खिड़की रूम की, और देखा कि कृष्ण का दूर दूर से वो देखी थी जा रहे हैं और कृष्ण का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। तो श्रीमती राधिका के हृदय में ये विचार आए कि मेरी तो स्थिति बिल्कुल उस बौने व्यक्ति की तरह है जो क्या करना चाहता है, बिना बोट के सागर को पार करना चाहता है। ये कैसे संभव है? एक ठेंगना व्यक्ति इतने बड़े जलाशय के आगार को पार करना चाहता है, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वो कहती है सखियों कृष्ण अनुग्रह बिना महत अनुग्रह नास्ति। तो श्रीमती राधिका ने कहा कि कृष्ण अनुग्रह, कृष्ण की अनुकंपा, कृष्ण का मिलन या कृष्ण की कृपा किसे प्राप्त करना है तो वो असंभव है यदि व्यक्ति बिना महत अनुग्रह नास्ति। महत मीन्स महान, महान जो भगवत प्रिय भक्त है उनका यदि अनुग्रह नहीं होगा तो भगवत अनुग्रह भगवत कृपा होना उस व्यक्ति के ऊपर असंभव है। तो सारी गोपियां जब श्रीमती राधिका की ये बात सुन रही थी तो उनको आश्चर्य लगा कि आपको क्या आवश्यक है महद अनुग्रह की, भगवत अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा यह असंभव ही है कि कोई भी व्यक्ति भगवत कृपा या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जब उसके ऊपर महान भक्त का अनुग्रह नहीं होगा। इसलिए हम गाते यश प्रसादात भगवत प्रसादो, यश अप्रसादात न गति कुतोपि। यदि ऐसे महान गुरु गणों की कृपा नहीं होगी तो भगवत कृपा असंभव है। तो श्रीमती राधिका ने कहा है गोपिकाओं आप बताओ कौन है वह सर्वोत्कृष्ट भक्त, आप जानती हैं कौन है वो उत्कृष्ट हरि भक्त? तो सारे जो गोपिका है उनके जो फेस है वो एक दूसरे की ओर देखने लगी, शांत हो गई और कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी। तो उसी समय श्रीमती राधिका ने कहा गिरेंद्र एव मुख्य। उन्होंने कहा गिरि इंद्र, गिरि मीन्स माउंटेन, इंद्र मीन्स राजा। उन्होंने कहा गिरेंद्र एव मुख्य, जो गोवर्धन है वही वास्तव में मुख्य है। क्योंकि हमने किससे सुना था? गर्ग मुनि से सुना था ये सारी बातें हैं। तो ललिता सखी ने कहा, तो उन्होंने राधा रानी ने कहा कि क्यों हो? क्योंकि इन्होंने इंद्र की कोप से हमें बचाया था, इंद्र का जो हमारे ऊपर प्रकोप हुआ था उससे उन्होंने बचाया था। ललिता सखी ने कहा कि हाँ यदि वो इतने महान है तो तुरंत हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी तुरंत उस विंडो से बाहर देखती है तो उनको गिरिराज नजर आता है, बरसाना से भी नजर आता है, हमें तो थोड़ा आता ही नहीं नजर, लेकिन वो वहां से गोवर्धन को देखती है क्योंकि गोवर्धन कोई छोटा नहीं है। ब्रज में जहां मर्जी कोई भी हो वो गिरिराज को देख सकता है। उसके हाइट 2 योजन थी, मतलब 16 माइल ऊंचा था गोवर्धन, कितना 16 माइल, और उसकी जो लंबाई है वो 8 योजन 64 माइल लंबा था और 5 योजन उसका वेट था चौड़ाई 40 माइल। तो इस प्रकार से वर्षा नामे से भी श्रीमती राधिका गोवर्धन को देखती हैं और देखकर अपना राइट हैंड ऐसे गोवर्धन की ओर करते हुए वो ये श्लोक का उच्चारण करती है। वास्तव में ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने उच्चारित किया था। हंता यम अद्रि रामला हंता ओ अयम अद्रि अद्रि मीन्स गिरी माउंटेन अबला हरिदास वरयो कि ये जो माउंटेन में दिखा रहे हो ये कौन है हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद ने वही कहा कि हम एक ही उपाधि की आकांक्षा करते हैं हम कई डेजिग्नेशन प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रखते। श्रील प्रभुपाद जब अपने अंतिम समय में आखिरी जो उनका विदेश विजिट था लंदन गए थे 1977 की शुरुआत में शायद तो वहां कई सारे इंडियन युवक उनसे मिलने आए हैं तो प्रभुपाद उनसे जो बात कर रहे थे तो हर एक कह रहा था मैं MBA हूं मैं PhD हूं मेरे पास ये डिग्रियां हैं हर कोई अपने अपने डिग्री को बता रहा था। प्रभुपाद ने कहा हम इन सारे डिग्रियों के लिए लालयित नहीं है हम तो एक ही डिग्री की आकांक्षा करते हैं वो है भक्ति या भक्त या हरिदास इस पोजीशन या इस डेजिग्नेशन के लिए हम अभिलाषा करते हैं इसकी अभिलाषा करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधिका इस गिरिराज को हरिदास वर्य कहती हैं और सारी गोपियां वहां गोवर्धन को देख के अपने हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाती हैं प्रणाम करने लगती हैं हम गिरिराज गोवर्धन को। तो इस प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं क्यों हरिदास वर्य है ये जो गोवर्धन है। श्रीमद् भागवतम में 3 प्रकार के हरिदासों का वर्णन आया है। नारद मुनि सबसे पहले हरिदास का वर्णन करते हैं। हरि का मतलब है जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था पापम दुखम चित्तम हरति यथा यथम इति हरिदास जो पाप दुख और चित्त को हरण करता है उसे हरिदास हरि कहा गया है और वही गुण वास्तव में हरिदासों में होते हैं। हरिदासों के संपर्क में आने से हमारे पाप दुख और चित्त भी कृष्ण में लग जाता है। इस प्रकार से भागवतम कहता है कि जो हरिदास हैं पहले हरिदास है वो युधिष्ठिर महाराज हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है कि हाँ युधिष्ठिर महाराज का जीवन इस प्रकार से था कि उनके पास सारा अमाप ऐश्वर्य आदि जो भी था वो केवल कृष्ण की महानता को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। और दूसरे हरिदास का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है वह है उद्धव क्योंकि उनका जो हृदय है वो कृष्ण के हृदय के समान ही था। और ऐसे उद्धव उनका एक गुण था कि कोई भी ऐसी वस्तु वो इस्तेमाल नहीं करते थे जो कृष्ण ने इस्तेमाल नहीं की हो। कृष्ण के उच्चिष्ट वस्त्रें धारण करेंगे कृष्ण के उच्चिष्ट अलंकार धारण करेंगे कृष्ण के पहने हुए उन्होंने निकाले हुए कपड़े धारण करते थे कोई ऐसी चीज नहीं थी उनके जीवन में जो अलग से यूज करते थे कृष्ण ने इस्तेमाल की हुई चीजों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये श्रीमती राधिका कहती हैं कि जो गोवर्धन है ये यूनिक है ये पूर्ण रूपेण अपने आप को ये जो गोवर्धन है वो कृष्ण की सेवा में लगाता है इसलिए ब्रज का मुकुट मणि कहा जाता है ब्रज का तिलक तिलक को हम माथे में धारण करते हैं तो ब्रज भूमि का कुछ तिलक है आचार्यगण कहते हैं तो ये तिलक गिरिराज है गोवर्धन है। और क्यों इनकी महानता है क्योंकि गिरिराज ऐसा एक भी दिन नहीं था कि जिस दिन गोवर्धन को कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त ना हुआ हो हर रोज कृष्ण के चरणों का स्पर्श उन्हें प्राप्त होता था अपने सारे सखाओं के संग में गोपिकाओं के संग में गोचारण लीला को प्रकट करने के लिए कृष्ण जाया करते थे गोवर्धन हाँ, तो अलग अलग गोपिकाएं जो विशाखा सखी कहती है कि वास्तव में जैसे ही कृष्ण के चरणों का स्पर्श हो जाता है किसे, गोवर्धन को। हाँ, यह कहते हैं यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, प्रमोद आनंदित हो जाता था, तुरंत दिव्य आनंद अष्ट सात्विक भाव वास्तव में गोवर्धन प्रकट करता था, उनके आंसुए बहने लगते थे। आचार्य कहते हैं गिरिराज के अश्रुपात क्या है, उनके ऊपर से जो वाटरफॉल्स जल गिरता था, बड़े बड़ी बड़ी मात्रा में जल के जो स्रोत हैं, वो उनका वास्तव में क्या है, अश्रुपात है, और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके रोमांच क्या है, घास है। हाँ, मुलायम जो घास है। तो चरण स्पर्श का मतलब है आचरण स्पर्श, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के चरण स्पर्श से ही गोवर्धन पुलकित या आनंदित नहीं होते थे, बल्कि आचरण स्पर्श। एक तो है चरण स्पर्श और दूसरा है आचरण स्पर्श। आचरण स्पर्श का मतलब है भगवान अपने जो संगी हैं, गोप सखा हैं, गोपिकाएं हैं, श्रीमती राधिका आदि हैं, उनके संग में लीलाएं करते थे, उसको आचरण स्पर्श कहते हैं। कि इन लीलाओं का के संपर्क में आने मात्र से जो गोवर्धन है वो अति आनंद अनुभव करता है। तो उनको गोवर्धन क्यों कहा जाता है, गो का मतलब है गवे, और वर्धन का मतलब है जो बढ़ाता है, गौओं का वर्धन करता है। तो ब्रज का जो गोवर्धन का जो घास इतना प्रभावशाली था, इतना आकर्षक था, इवन सूर्य भी, सूर्य देवता अपने रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं, वो भी अपने रथ के घोड़ों को कभी कभी भेजा करते थे यहाँ गिरिराज का घास चराने के लिए, इतना आकर्षक था। और ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि वो घास इतना महत्वपूर्ण या मुलायम वाले क्यों था, क्यों गवों का वर्धन होता था, क्योंकि दूध वहां जल जल से वो बढ़ता नहीं था। जब जो ब्रज के जो गवे हैं वो विचरण करते थे तो उनके स्तन इतने भरे होते थे कि वहां से दूध की धारा से पूरा जो ब्रज का चारागाह है वो कीचड़ युक्त हो जाता था। और जब उनका दूध और सूर्य की किरणें जाते थे उस घास के ऊपर, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे घास में चार प्रकार के जो गुण हैं वो प्रकट होने लगते थे। पहला गुण का क्या था गोवर्धन के घास का, वो था सुगंध। मतलब वो ऐसा वैसा घास नहीं था गिरिराज का। हाँ, इसलिए गिरिराज को कहा गया है सह गो गण, भगवान की ही सेवा नहीं करते थे गिरिराज, बल्कि भगवान से संबंधित या भगवान की जो प्रिय गण है उनकी भी सेवा में लगे थे, तदीय वस्तु। हाँ, ऐसे नहीं कहा कि केवल भगवत सेवा में नियुक्त है, वहां कहा कि भगवान के संगियों की भी सेवा करते थे, गौवे जो भगवान को प्रिय है उनकी भी सेवा करते थे। उसी को हरिदास या भक्त कहा जा सकता है, जो भगवान और भगवत संबंधी वस्तुओं का या भगवत प्रिय वस्तुओं का उतनी ही मात्रा में आदर सम्मान और सेवा करता है, इसलिए वह हरिदास वर्य है एक प्रकार से। तो जब दूध और सूर्य के संपर्क में आने से घास की वृद्धि होती थी और घास में चार प्रकार के गुण बढ़ते थे, तो पहला था कि वो घास सुगंधित हो जाता था, और दूसरा क्या है सुकोमल। जैसे गर्मी के दिन आ जाए, समर आ जाए, तो जो घास है आप देखेंगे कि बिल्कुल ये हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, फिर भी गवे खाती है। गांव में आपने देखा होगा हर बार हरा घास नहीं मिलता उसको, घास को काट के रखते हैं लोग, 3-4 महीने बारिश के दिनों, शुरुआत के दिनों में उनको वो घास खिलाया जाता है। लेकिन जो गोवर्धन का जो घास है वो इतना अधिक सॉफ्ट, और चाहे समर हो या कोई भी सीजन हो, हमेशा मुलायम बना रहता था, सुकोमल। और तीसरा है पुष्टिवर्धन। पुष्टिवर्धन का मतलब है कि वो घास केवल टेस्टी नहीं था बल्कि हेल्दी था। इस जगत में हम कितने ऐसी वस्तुएं जो टेस्टी होती हैं जिसको खाते हैं, हाँ, जिनका पीछा करते रहते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती, जैसे फास्ट फूड है वो टेस्टी है लेकिन शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन ब्रश या गोवर्धन का जो घास है वो टेस्टी भी है और साथ साथ हेल्दी भी है। और चौथा गुण श्रीमती राधिका कहती है दुग्ध संपर्क। दुग्ध संपर्क का मतलब है ये जो घास गवे खाने मात्र से गवों में इतनी एबिलिटी जागृत करती है कि अनलिमिटेड दूध ये जो ब्रज की गवे हैं वो प्रदान करती है। आजकल की गवे तो 40 लीटर दे सकती हैं, लेकिन ब्रज की सारी गाय कौन सी है? कामधेनु। कामधेनु है भगवान ऐसे विश्वर अभिपाले अंतम। हाँ भगवान सुर भी गवे हैं, कामधेनु ये कहा जा सकता है उनको। तो ऐसे गवे जो अनलिमिटेड दूध प्रदान करती है, जैसे श्रीमती राधा रानी से इतना डिस्क्रिप्शन सुना सारी गोपियां साधु साधु कहते हुए चिल्लाने लगी, तालियां बजाने लगी, हरि बोल कहने लगी। तो इस प्रकार से ये जो गिरिराज है जो हर समय भगवान की सेवा में अपने आप को लगा के रखता है, भगवान के गवों को भी गवों की सेवा करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कृष्ण जब अपने 9 लाख गवे चराने के लिए निकल पड़ते थे तो ये कितना कठिन है, 9 लाख गवे एक ही स्थान से गिरिराज में आकर घुसेगी तो जो सबसे आगे गवे हैं उन्होंने घास खाया तो पीछे आने वालों को कितना मिलेगा घास? बहुत ही छोटा, 9 लाख गवे। तो लेकिन आचार्य जन कहते हैं कि गोवर्धन इसलिए भी उनका नाम है कि 9 लाख गवे कृष्ण के आगे चलते थे, आगे वाली गाय जैसे खाते थे घास खाते निकलती आगे कि नहीं तुरंत वो घास क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। पीछे से कृष्ण की जो गवे आ रही है उनको उसी मात्रा में वो घास प्राप्त होता था, इसलिए उनको गोवर्धन कहा गया है कि जो आप भगवान के लाखों गायों का पालन करते थे उनका वर्धन करते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण और उनकी सखाओं की सेवा में ये गोवर्धन उनको सारे कलर्स प्रदान करता है, फ्रूट्स है, शहद है, जल है और कंदराय आदि है। तो इस प्रकार से ये जो गिरिराज जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा में समर्पित किया है, तो इसलिए जो गोपिकाएं हैं वो कहती है कि हरिदास वर्य है। तो जो गौड़िया वैष्णवास है क्योंकि ये गोवर्धन साक्षात कृष्ण है और कृष्ण का महान भक्त भी है, तो जो गौड़िया वैष्णवास है वो उनकी पूजा करते हैं भगवान के महान भक्त के रूप में और उनका शरण लेते हैं, क्योंकि ऐसा गोवर्धन जिनमें सामर्थ्य है भक्ति रस या भगवत भक्ति हमें वो प्रदान करते कर सकते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो विशेष आकर्षण किसके लिए था? गिरिराज गोवर्धन के लिए था। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में वृंदावन का भ्रम होता था। चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाया चले अर्तनाद करे या क्रंदने। तो चटक पर्वत का मतलब है जगन्नाथपुरी में समंदर की रेत या बालू से ठेले बन जाते थे, ठेले बड़े बड़े माउंटेन जैसे बन जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु उन समंदर के किनारे की उस हाइट बालू के रेत की हाइट को देखकर चैतन्य महाप्रभु को गोवर्धन का भ्रम हो जाता था और दौड़ते हुए जाते थे गोवर्धन का आलिंगन करने के लिए। वन देखी ब्रह्मा यही वृंदावन, शैल देखी मने यही गोवर्धन। और जगन्नाथपुरी में भी जब वो वनों को गार्डन्स को पेड़ लताएं आदि को देखते थे तो उनका वृंदावन का स्मरण उठता था, और किसी बड़े पत्थर या छोटे से माउंटेन आदि को देखते थे वो गोवर्धन को देखते। चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार वृंदावन में आए तो कृष्णदास कविराज कहते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपना जो प्रेम है वो व्यक्त किया था गिरिराज के प्रति। तबे चली आया प्रभु सुमन सरोवर, तहां गोवर्धन देखे हाय लाभिवान। तो चैतन्य महाप्रभु मथुरा के जो ब्राह्मण थे उनके संग में उन्होंने ब्रज दर्शन किया था, अकेले नहीं, बलभद्र भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण और मथुरा के जो सोनड़िया ब्राह्मण जो चैतन्य महाप्रभु को मिले थे पहली बार, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सारे वृंदावन में घुमाया। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु को लेकर वो गोवर्धन गए और गोवर्धन की परिक्रमा चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा में सबसे पहले स्नान किया, हरिदेव का दर्शन किया और इस श्लोक का उच्चारण करते हुए नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, गोवर्धन की परिक्रमा की। उस दिन हमने भोलाष्टमी के दिन सुना था कि उसी परिक्रमा करते करते चैतन्य महाप्रभु अरिष्ट ग्राम आए और उन्होंने पूछा ये राधा कौन कहाँ है, तो किसी को पता नहीं चला तो महाप्रभु ने उनका प्राकट्य किया। तो उस राधा कुंड को पार करने के बाद कृष्णदास कविराज कहते हैं, तभी चले आएगा प्रभु सुमन सरोवर, सुमन मीन्स कुसुम, कुसुम सरोवर में आए, तहां गोवर्धन देखी हैला विवल, राधा कुंड के वहां तो आपको गोवर्धन नहीं दिखता, कुसुम सरोवर से थोड़ा सा आगे चलते हुए तो कुछ गोवर्धन की शिलाएं आपको नजर आती है परिक्रमा मार्ग में। तहां गोवर्धन देखी हैला विवल, महाप्रभु बहुत विवल हो उठे, उनका हृदय द्रवित होने लगा गोवर्धन को देखने मात्र से। महाप्रभु ने क्या किया, गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत, एक शिला ले गया हैला उन्मान। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे गिरिराज को थोड़ा से देखा, महाप्रभु ने वहां दंडवत प्रणाम किया और एक शिला को जाकर चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। क्यों, क्योंकि शिला, चैतन्य महाप्रभु कहते शिला कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर, कि ये जो गोवर्धन की शिला है चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि ये कृष्ण कलेवर है, साक्षात कृष्ण का शरीर है, दिव्य देह है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, एक मायावादी सन्यासी श्री शंकरारण्य सरस्वती जब वृंदावन आए थे तो उन्होंने अपने साथ एक गिरिराज शिला और एक गुंजा माला लेके आए थे। और जब वो पुरी पहुंचे तो उन्होंने जो गिरिराज शिला है वो चैतन्य महाप्रभु को भेंट की और गुंजा माला भी उनको दे दी और चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद से उसको स्वीकार करते हैं गिरिराज शिला को। और वो गिरिराज शिला के लिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने हाथ में रखते थे, कभी ऐसे छाते में लगा के रखते थे कई घंटे, कभी सर में रखते थे, कभी आंखों में ऐसे लगा के रखते थे, कभी उसको सूंघते थे गिरिराज शिला को। और चैतन्य महाप्रभु उस शिला को देखने मात्र से रो जाते थे। और इतना अधिक कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ऐसा समय नहीं था कि वो शिला ड्राई हो गई हो, नहीं, महाप्रभु जैसे उसको देखते हाथ में लेते तुरंत चैतन्य महाप्रभु के आसन स्थापन से आसन निकलते और हर समय वो जो गिरिराज शिला है वो गिरी रहती थी। इस प्रकार से उस गिरिराज शिला की सेवा चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में 3 साल तक की थी। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने वही शिला रघुनाथ दास गोस्वामी को दी और उन्होंने रघुनाथ गोस्वामी को कहा कि किस प्रकार से गिरिराज की सेवा कर सकते हो। प्रभु कहे ये शिला कृष्ण रविग्रह यहार सेवा कर तुम्हें करे आग्रह न, कि ये जो शिला है ये कृष्ण का विग्रह है, इसकी सेवा तुम करो, इसको ले लो मुझसे। ये शिला कर तुम्हें सात्विक भोजन आचिरात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेमधान। ये गिरिराज की थोड़ी भी सात्विक सरलता से सिंपल सेवा करोगे तुम्हें क्या प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम रूपी जो धन है वो प्राप्त होगा। तो महाप्रभु ने कहा कैसे सेवा करो, एक कुंज जल आर तुलसी मंजरी सात्विक सेवा ये शुद्ध भावे करी। तो गिरिराज जो साक्षात कृष्ण कलेवर है, कृष्ण ही है, हाँ, वो इससे संतुष्ट हो जाते हैं। एक लोटा जल भगवान को आप अर्पित करते हुए ग्लास जल महाप्रभु ने कहा और तुलसी मंजरी, हाँ, थोड़ी सी तुलसी मंजरी जो तुलसी है, हाँ, जब मंजरी के साथ 2 पत्ते होते हैं उसको हम कृष्ण को अर्पित करते हैं कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, आनंद अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हर समय गोवर्धन के मूड में मग्न रहते थे, और एक विशेष लीला चैतन्य चरितामृत में आती है जिसको मैं पढ़ता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु हर समय एक प्रकार से ब्रज में ही निवास करते थे। इवन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो भी वो गोवर्धन में रहा करते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु एक दिन महाप्रभु समुद्र जायते शटक पर्वत देखी लेन अचंभिते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ भक्तों के संग में समंदर की ओर निकले थे, जहाँ टोटा गोपीनाथ है, जगन्नाथपुरी गए हमने तो वहां जो भक्तों के संग में जा रहे थे, बहुत सारे भक्त उनके संग में थे, तो उन्होंने सामने ही देखा कि जो बालू का ढेर लगा हुआ है उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु अचंभित हो जाते हैं, और उनको क्या स्मरण आता है, गोवर्धन शैल ज्ञाने अविष्ट हैना पर्वत दिशाते प्रभु धाय शरीरा। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उस पर्वत को देखा तो चैतन्य महाप्रभु जोर से दौड़ने लगे, भक्तों से बातें करते हुए जा रहे, अचानक उनके मन में सामने उसको देखा, उस बालू के ढेर का और गोवर्धन का स्मरण हो आया। सारे भक्तों का संग को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, और दौड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे, हंताय मदरी रगला हरिदास वरियो। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए महाप्रभु भाग रहे थे। ये श्लोक पढ़े प्रभु चले न वायु वेगे गोविंद धाई लपाचे नाही पाय लागे। तो इस श्लोक का उच्चारण करते हुए चैतन्य महाप्रभु वायु के वेग से दौड़ने लगे, और उनका जो सेवक है गोविंद वो भी उनके पीछे भाग रहा था, और अचानक सबने देखा कि महाप्रभु नहीं है, वो भाग रहे हैं। तो जितने भी भक्त थे, स्वरूप दामोदर, जगदानंद पंडित, गदाधर पंडित, रामाई, नंदाई, शंकर पंडित, ये सारे जो भक्तगण थे, ये सारे चैतन्य महाप्रभु के पीछे दौड़ने लगे। प्रथमे चलेला प्रभु जैन वायु गति स्तंभ भाव पते है चलेते नाही शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु तो बहुत जोर से दौड़ रहे थे, लेकिन अचानक बीच में बिल्कुल स्तब्ध हो गए, रुक गए, और अभी वो चल नहीं पा रहे थे। प्रतिरोम कूपे मांस वर्णे आकार तारो परे रोम कदम प्रकार। और उनमें सारे जो भगवत प्रेम के जो भाव हैं वो प्रकट हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु एक जगह गिर जाते हैं, गिरते ही उनके जितने रोम कूप थे उनमें सारे शरीर में फुंसियों के समान पूरे शरीर में वो फुंसियां निकलती हैं, भगवत प्रेम का एक विकार है, और उसके ऊपर भी जो रोमांच है वो खड़े हो जाते हैं, ऐसे लग रहा था कि कदम्ब का फूल है, और उस रोम कूप से रक्त की धारा बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु का कंठ में किसी प्रकार का आवाज नहीं आ रहा था, केवल घर घर का उच्चारण कर रहे थे, और देरों नेत्रों से वो रोते जा रहे थे, केवल गिरिराज का स्मरण करते हुए। दुई नेत्र भरे अश्रु बहाए अपार समुद्र में लीला जन गंगा यमुना धार। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का विरह गोवर्धन के प्रति इतना अधिक था कि उनके आंखों से आंसुए बह रहे थे, जिसकी तुलना वो गंगा से करते हैं कि जो समंदर को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए हैं। तो उस समय जो गोविंद है उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उन्होंने अपना कपड़ा लिया, उनके शरीर को पोंछा, और उनके हाथ में कमंडलू था जिसमें जल था, वो जल से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उन्होंने पानी छिड़का, और सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु के कान के पास जाकर जोर से उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे इस हरिनाम का उच्चारण किया, यही मत बहु बार कीर्तन करते हरे बोल बलि प्रभु उठे अचंभित। चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठ गए, और सारे भक्त जोर जोर से हरि ध्वनि करते जा रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु की आंख खुले तो वो भागना चाह रहे थे, इधर उधर देख रहे थे कि मैं कहां हूं। तो उन्होंने देखा कि मेरे पास सारे वैष्णव खड़े हैं, मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। तो फिर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर का हाथ पकड़ा और उनको कहा, गोवर्धन है ते मोरे के कृष्ण लीला देखी देना पाईला। उन्होंने कहा मैं तो गोवर्धन में था, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों ले आए। पाया कृष्ण ने लीला देखी देना पाया, वहां कृष्ण की लीला को मैं देख रहा था और आप लोगों ने मुझे गोवर्धन से पीछे यहाँ खींच के लाया है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ गोवर्धन देखो यदि कृष्ण करे गोधन चारण है। उन्होंने कहा आज मैं यहाँ से ही वॉकिंग करते करते वो कहाँ चले गए थे, गोवर्धन। यहाँ है ते आज मुई गेनु गोवर्धन है, यहाँ से मैं आज गोवर्धन चला गया था देखने के लिए कि कृष्ण की वहां गोचारण लीला हो रही है या नहीं, कृष्ण को देखना चाह रहा था। गोवर्धन चढ़े कृष्ण बाजा लीला बेनो, गोवर्धन चौदह के चढ़े सब देनो। उन्होंने कहा जब मैं गोवर्धन में पहुंचा तो देखा कृष्ण वहां अपने गोचारण लीला को प्रकट कर रहे थे और कृष्ण गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए। चढ़कर उन्होंने क्या किया, बाजा लीला बेनो, बेनो का वादन किया, बांसुरी बंसी का वादन किया। और जैसे भगवान ने बेनो का वादन किया गोवर्धन चौधरी के चरे सब धेनु, और देखा कि सारे जो गब्बे हैं गोवर्धन के इर्द गिर्द चल रहे थे। वेणुनाद सुनिया इला राधा ठाकुरानी, सब सखी गण संगे करी आसाजने। गब्बे तो आकर्षित हो ही रही थी भगवान के वेणु ध्वनि से, लेकिन जैसे ये वेणु की ध्वनि श्रीमती राधा ठाकुरानी के कानों में गई तो वो भी अपने सारे सखियों के संग में उसी स्थान में पहुंची। सब सखी गण संगे करी आसाजने, राधा लैया कृष्ण प्रवेश इलाकत। वेणुनाद राधा लैया कृष्ण प्रवेश इलाकंद राते, सखी गण चाहे के फूल उठाए थे। तो आप जो पूछरी का लोटा परिक्रमा मार्ग आता है तो वहां राघव पंडित की गुफा है के आपने कभी देखा होगा, वही स्थान है जहां चैतन्य महाप्रभु गए थे। महाप्रभु ने कहा जब श्रीमती राधे का सारे सखियों के संग में आए तो वो कृष्ण और श्रीमती राधे का आदि सखीगण स्कंदरा में चले जाते, केव में चले जाते हैं और बाकी सखियां मुझे सेवा में लगाती है। किसको, चैतन्य महाप्रभु। कहते जाओ फूल तोड़ के लेके आओ। हे नकारे तुम्हें सब कोलाहल कैला, तहां है ते धरि मोरे यहां लैया आयला। सबने कहा जब मैं फूल तोड़ने की सेवा मिली थी तुम सबने कोलाहल किया, चिल्लाने लगे और मुझे वहां से उठा के कहां लेके आए, यहां लेके आए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दुख महसूस कर रहे थे। केने वा आनीला मोरे वृद्धा दुख लेते, पाया कृष्ण लीला ना पाए न देखते। क्यों आप मुझे लेके आए, मैं इतना अधिक आनंद कृष्ण लीला को देख रहा था वृंदा गोवर्धन में और वो अभी देख नहीं पा रहा हूँ। ये तबले महाप्रभु करे न क्रंदन, तार दशा देखी वैष्णव करे न रोधन। चैतन्य महाप्रभु ये सोचते हुए कि मुझे गोवर्धन से क्यों इन लोगों ने वापस ले आया। चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे और चैतन्य महाप्रभु का रोना देखकर जितने भी वैष्णव वहां थे वो सब भी जोर जोर से रोने लगते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो अप्रतिम प्रेम गिरिराज के लिए था, क्योंकि गिरिराज कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए तुलसी महारानी तुलसी जो गोपी का है, गोपी है, वो कहती है कि जो गोवर्धन है वो ग्रेटेस्ट पिकॉक है, मोर है। उस गिरिराज की तुलना मोर से की गई है। उस मोर के जो पूंछ है वो क्या है, पुछरे का लोटा है, और उनकी जो गर्दन है वो मानसी गंगा है। आप परिक्रमा के स्थानों का स्मरण करते हैं और उनका जो फेस है वो कुसुम सरोवर है, और उस मोर के जो दो आंख है वो है श्याम कुंड और राधा कुंड, और उनका जो मुख है मानसी गंगा के पास जो मुखार बिंदा है वो है। इस प्रकार से आचार्यगण इसकी व्याख्या करते हैं। और जब ये सब हो रहा था तो श्रीमती राधिका ने कहा कि ये तुंग विद्या जो अष्ट सुखियों में से एक है, उन्होंने कहा कि तुम भगवत महिमा को सुनाने में बहुत एक्सपर्ट हो, अच्छा ज्ञान रखती हो, तुम क्या करो हम ना इस गिरिराज की महिमा को बहुत विस्तार से सुनना चाहते हैं। तो वो तुंग विद्या जिनके अंदर ये योग्यता थी उन्होंने कहा, राधा रानी ने कहा आप इनके प्राकट्य आदि का वर्णन करो, इनकी महिमा का वर्णन करो, हम उसको सुनना चाहती हैं। तो तुंग विद्या सखी वो कहती है कि नारद और जो बहुत आश्व है हम जिसका वर्णन करके संहिता में भी आता है कि उनमें दोनों में जो डिस्कशन हो रहा था, राधा रानी ने पूछा कि गोवर्धन का प्राकट्य बताओ, श्रीमती राधा रानी कारण है, गोवर्धन के प्राकट्य की कारण कौन है, श्रीमती राधिका है, फिर भी गिरिराज की महिमा को वो सुनना चाहती है, भगवत या भक्त आदि की महिमा को सुनना चाहती है। तो तुंग विद्या ने कहा जो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में ये जो गोवर्धन है इसका आध्यात्मिक जगत में शुद्ध शृंग नाम है, शुद्ध शृंग पर्वत, तो ये जो भगवान आध्यात्मिक जगत में इटर्नली नित्य रूप से गोलोक में अपनी लीलाएं करते हैं, जो अद्भुत वातावरण है, और राधा कृष्ण अन्य सखी और अपने जो संगी हैं उनके संग में निवास करते हैं, तो श्रीमती राधिका वहां एक बार कृष्ण से कहती हैं यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं या गोपिकाओं से तो मैं एक इच्छा प्रकट करना चाहती हूँ, उस इच्छा को आप क्या करो पूर्ण करो, श्रीमती राधिका ने कहा। तो कृष्ण ने कहा कि हाँ पूछो पूछो बताओ जो भी इच्छा है मैं आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए हूँ। श्रीमती राधिका कहते हैं कि जो यमुना का जो स्थान है, यमुना का जो तट आदि है वो बहुत अधिक एकांत स्थान है, लीला विहार आदि के लिए बहुत मधुरम स्थली है, लेकिन उससे भी बेटर, उससे भी अच्छा एक लीला स्थली को आप क्रिएट कीजिए। जब कृष्ण को ये कहा तो श्रीमती राधिका की इस इच्छा की पूर्ति के लिए कृष्ण ने क्या किया, हाँ बता उसको, उन्होंने कहा आपकी इच्छा में प्रकट करो, इच्छा की पूर्ति करूंगा कि ब्रज में सर्वोत्कृष्ट लीला स्थली को प्रकट कराऊंगा। तो कृष्ण अपने आंखों को बंद करते हैं और अपने हृदय में झांकते हैं, हृदय में देखते हैं अंतर्दृष्टिकोण से, और जैसे कृष्ण काफी समय तक अपने हृदय में देखते जा रहे थे और कृष्ण को सारी गोपिकाएं और श्रीमती राधिका आदि देख रही थी, और कृष्ण ने देखा कि मेरे हृदय में जो भावना है, जो भावना सारे जीवों को या सबको आनंद प्रदान करती है, तो भगवान ने क्या किया उसी समय अपने हृदय से जो उनका प्रेम श्रीमती राधा रानी के लिए है उसको प्रकटित किया। और शास्त्र कहते हैं कि वो एक सीड के फॉर्म में प्रकट हो जाता है, एक छोटे से रॉक के रूप में प्रकट होता है, पहले तो वो सीड फॉर्म में था जो वाटर और फायर का मिश्रण था एक प्रकार से, और एक रॉक जैसे जैसे वो भगवान के हृदय से बाहर प्रकट होता है वो एक छोटे रॉक का रूप धारण करता है, और उस रॉक को सारी गोपियां देख रही थी, श्रीमती राधिका आदि देख रही थी, वही रॉक जो पत्थर है रास मंडल में धीरे धीरे सबके सामने बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा होता है इसमें अलग अलग हिल्स हैं, झरने हैं, बहुत अधिक कंदराएं हैं, बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब जब देखा राधा कृष्ण ने तो ये सारी गोपिकाएं कृष्ण आदि सब लोग गिरिराज के ऊपर चढ़ते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से भगवत प्रेम जो श्रीमती राधा रानी के लिए है वो गोवर्धन के रूप में प्रकट होता है, इसी कारण से इसको कृष्ण से अभिन्न कहा जाता है कि साक्षात कृष्ण ही हैं जो गिरिराज है। तो ऐसा गिरिराज जो भगवान के बहुत महत्वपूर्ण लेना स्टडी है और जो हमें इस गिरिराज का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि गिरिराज के संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो चाहे कितना ही पापमय प्रवृत्ति का क्यों ना हो, कितना ही नीच गिरा क्यों ना हो, फिर भी वो पवित्र हो सकता है। तो इन्हीं के कन्वर्सेशन में छोटी सी घटना आती है जिसका वर्णन करके मैं विराम करता हूं। तो जब इन सारे गोपियों ने तुंग विद्या को कहा कि और हमें बताओ, तो उन्होंने कहा एक बार एक जो ब्राह्मण है विजय नाम का ब्राह्मण, उसके ऊपर बहुत अधिक कर्जा था, जो मथुरा चला गया था अपना कर्जा देने के लिए किसी व्यक्ति को। तो जब वो मथुरा गया तो मथुरा दर्शन घूमते घूमते वो ब्रज के कई स्थानों में घूमने लगा, घूमते हुए वो गोवर्धन भी गया, उसको पता नहीं था ना कुछ, तो गोवर्धन में ऐसे एक पत्थर को परिक्रमा करते करते पत्थर को उठा लिया। जैसे प्रभुपाद कृष्ण बुक में लिखते हैं, कई लोग कहते हैं कि गिरिराज परिक्रमा करने जाएंगे और वहां गिरिराज के पत्थर को उठा के ले आएंगे, जो कृष्ण की डायरेक्ट सेवा है हम उसकी पूजा करेंगे नहीं, हम गुरु की परमिशन के बिना हम गिरिराज को नहीं ला सकते। कई ऐसे विदेशी माताओं ने किया था भावुकता से, और वहां जाकर उनको बहुत सारे कष्टों को झेलना पड़ा, फिर इमीजिएटली क्या करना हुआ उनको गिरिराज, क्योंकि गिरिराज को ब्रज से अधिक आनंद हम बाहर नहीं दे सकते। गिरिराज सर्वाधिक आनंद ब्रज में अनुभव करते हैं, जो कृष्ण की लीला भूमि है। तो ये जो ब्राह्मण था इसको पता नहीं था, इसने कैसे ही गिरिराज का एक पत्थर उठाया, हाथ में अकेला घूमते घूमते निकला और जैसे ब्रज के बाहर आया, ब्रज भूमि जो 84 कोस है उससे बाहर आया, जो अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन उसके हाथ में क्या था, अभी भी वो पत्थर था गिरिराज का, गिरिराज थे एक प्रकार से। तो बाहर आया उस एरिया से, उसे बाहर देखा कि एक बहुत बड़ा जो राक्षस है वो उसकी ओर आ रहा था, जिसका वर्णन करते कि उसके 3 सर थे, 6 हाथ थे और बहुत लंबी जीवा थी, बड़ा नाक था, बड़े बड़े बाल जो काटे के समान थे और बड़े बड़े दांत थे। तो अभी ये उसको खाने वाला था उस व्यक्ति को, तो इसने क्या किया, अपना बचाव करने के लिए जो भी चीज हमारे हाथ में सबसे पहले आती है उसको फेंकते हैं। इसके हाथ में तो वैसे पत्थर था, इसने इतने जोर से उस गिरिराज शिला को फेंका जैसे उस पत्थर उस राक्षस के शरीर को टच होता है, उसी क्षण उसका शरीर वहां गिरता है और नया युवक जो वैकुंठ युवक का जो शरीर है उसको प्राप्त होता है और वो अक्का बक्का हो जाते हैं। सोचते मैंने क्या किया, पत्थर मारा और उससे उसमें इतना एक छोटे से पत्थर में इतने बड़े राक्षस को हराने का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसने देखा कि ये तो अद्भुत है, आश्चर्य की बात है। तो उसने क्या किया, वो युवक जो प्रकट हुआ उस राक्षस के शरीर से, तो उसने हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि आपने मेरा उद्धार किया है। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा था मैंने कैसे उद्धार किया। उन्होंने कहा कि आपने, आपके हाथ में कोई नॉर्मल पत्थर नहीं था, ये साक्षात गिरिराज है और जिसका स्पर्श करने मात्र से, यहां कोई व्यक्ति गिरिराज की शिला का दर्शन करता है तो भी वो भगवत प्राप्ति करने का सामर्थ्य रखता है। तो क्या कहा जाए, जो व्यक्ति गिरिराज का स्पर्श करता है उनको सर्व करता है, तो गिरिराज के स्पर्श से मुझमें ये परिवर्तन आया है। तो उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कैलाश में 5,000 साल तपस्या करता है तो एक क्षण के लिए गोवर्धन जाता है तो उससे 1,000 गुना बड़ा है कैलाश पर्वत में या शिव जी के स्थान में तपस्या करने से। या कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को 1,000,000,000 गाय दान देता है, उससे जो फल प्राप्त होता है उससे बढ़कर लाभ केवल एक बार गोवर्धन को आप विजिट करते हैं। हम तो ऐसे कई सारे महिमा का वो वर्णन करते हैं और वो कहते हैं इसका लिविंग प्रूफ कोई है तो मैं आपके सामने, कि मैं इतना अधिक पापी व्यक्ति था अपने पूर्व जन्म में, तो इन्होंने पूछा कि आपको ये ऐसा शरीर कैसे प्राप्त हुआ, इतना भयावह। तो उन्होंने कहा मैं अपने पूर्व जन्म में एक धनवान का वैश्य पुत्र था और जुआ शराब आदि में लगा हुआ था, सारा धन माता पिता मना करते थे धन लेने के लिए। एक दिन मैंने अपने माता पिता को विष पिला के मार दिया, सारे धन को लेकर चला गया। और पत्नी भी थी, क्योंकि मैं वेश्या से आसक्त हो गया था, एक वेश्या से मेरा आसक्ति था, इसलिए मैंने माता पिता को मारने के बाद अपनी पत्नी की भी हत्या की तलवार से। और मैं उस वेश्या और धन को लेकर निकल पड़ा और फिर उस वेश्या से भी मुझे घृणा होने लगी, तो मैंने उस वेश्या को भी कुएं में फेंक दिया, उसको मार डाला। और इतना अधिक मैं पापी हो गया था कि जो भी यात्रीगण थे किसी को लूटना मारना पीटना। तो एक दिन जब मैं ऐसे पापाचार में व्यस्त था, चलते चलते मेरा पांव सांप के ऊपर पड़ता है, मुझे काटता है और मेरी मृत्यु हो जाती है और यमदूत मुझे ले जाते हैं। और फिर भी मुझे भारत वर्ष में जन्म मिलता है। मैंने कहा पहले तो मुझे शरीर मिला था सुअर का, फिर टाइगर का, फिर कैमल का, फिर पैसे का, फिर सांप का। तो इतने सारे हजारों हजारों बल मुझे मिले और फिर फाइनली मुझे एक शूद्र का रूप मिला था। और ये भयावह रूप मुझे मिला था, बल्कि इस रूप के साथ मैं ब्रज में एंटर नहीं कर सकता था, मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ब्रज भूमि से वो बाहर ही रहता था हमेशा। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी ये जो कृपा है, आपने मुझे गिरिराज का स्पर्श कराया है जिनके कारण मुझ में इतना परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार से जो ये सारी जो घटनाएं हैं, गिरिराज की जो महिमा है, ये सारी गोपिकाएं सुन रही थी। और उन्होंने तुंग विद्या से सुना कि केवल गिरिराज का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति इतना उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है, जो निकृष्ट व्यक्ति है। तो साधक के लिए कहा क्या कहा जाए, जो भगवत प्राप्ति की अभिलाषा रखता है उसके लिए कितना अधिक लाभदायक है गोवर्धन के संपर्क में आना, उनकी सेवा में लगना, उनका दर्शन करना, उनकी परिक्रमा आदि करना। तो इसलिए ये जो गिरिराज पूजा है, आज भगवान ने गिरिराज का पूजन किया था और स्थापित किया था कि गिरिराज उनसे अभिन्न है। तो हमें गिरिराज से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार से गोपिकाएं उन्होंने कहा कि ये जो गिरिराज है हरिदासों में सर्वोत्कृष्ट है। तो हमारा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा भी यही है, दास दासानुदास। तो भगवान के महान भक्तों का आश्रय हम ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से यश प्रसादा भगवत प्रसाद। गिरिराज की कृपा प्राप्त करने का आज दिन है, उनके बारे में हमें श्रवण करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए, प्रार्थनाएं चांग करनी चाहिए। तो गिरिराज की जो कृपा है वह हमारे लिए सरल हो सकती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं खत्म हो सकती हैं। बल्कि कृष्ण के उस लीला से हम देख सकते हैं, कृष्ण ने सबको शेल्टर प्रदान किया, गिरिराज का शेल्टर दिया, ठीक है, अपने शेल्टर में नहीं, आओ गिरिराज के शेल्टर में हम खड़े हो जाओ ब्रजवासियों को। तो उसी प्रकार से हमें भी ऐसे महान जो गिरिराज हैं उनके आश्रय की कामना करनी चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आश्रय लैया भजे कृष्ण कारण नहीं तेज। जो भक्त भगवत भक्तों का आश्रय लेकर भक्ति का पालन करता है, कृष्ण उसका त्याग करने में असमर्थ हो जाते हैं। हरे कृष्ण। गिरिराज गोवर्धन के, श्रील प्रभुपाद के, नित्यानंद गौर प्रेमानंद के।